एकदा आराधन काल आत्मवान ग्रहित मौनवृत ईश्वरम हरिम जटाधरस्तापस आप्लुतोचतम समचर्यमासकुला चलाश्रमा। इंद्रद्युम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया और मलय पर्वत चला गया, जहां उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सिर पर जटाएं थीं और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वह मौन व्रत धारण किए श्री भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। यदृच्छया तत्र महाशया मुनि समागमच्छय गणे परिषिता तम वीक्षया तूष्णिम अकृत अरादिकम रस्य उपासेनम ऋषिश्चुकोपहा। जब इंद्रद्युम्न महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे, तो अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न एकांत स्थान में मौन साधे बैठा है और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। तो अब हम आज का श्लोक लेते हैं, पहले इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। मेरे पीछे बोलिए, तस्मय महाराज इंद्रद्युम्न को इमाम यह शापाम शाप अदात दे डाला असाधु अभद्र अयाम यह दुरात्मा नीच व्यक्ति अकृत अशिक्षित बुद्धि उसकी बुद्धि अद्य अब विप्र ब्राह्मण का अवमंता अपमान करने वाला विष्टाम प्रवेश करे तमिस्त्रम अंधकार में यथा जिस तरह गजा एक हाथी स्तब्ध मति कुंद बुद्धि वाला स वह एव निसंदेह। मेरे पीछे दोहराइएगा, तस्मा इमं शापम अदाद साधुर तस्मा इमं शापम अदाद साधुर अयम दुरात्मा अकृत बुद्धिर अद्य अयम दुरात्मा अकृत बुद्धिर अद्य विप्र अवमंता विशंताम तमिस्त्रम विप्र अवमंता विशंताम तमिस्त्रम यथा गजा स्तब्धमति स एव तस्मा इमं शापम अदाद साधुर अयम दुरात्मा आत्मकृत बुद्धिराद्य विप्रावमंता विशंताम तमिस्तरम यथा गजा स्तब्धमति स एव। बोलिए, तस्मा शापम अदाद साधुर माताएं। तस्मा इमं शापम अदाद साधुर दुरात्मा कृत बुद्धि प्रावमंता विशतांत मिस्त्रम एवं शापम अदाद साधु यथा गजा सप्तमति स एव मां शापम अदाद साधुर अयम दुरात्मा कृत बुद्धिरद्य प्रावमंता विशतां तमिस्त्रिं यथा गजा स्तब्धमति स एव। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की तब अगस्त मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला, यह राजा इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतः यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। एक दफा मेरे पीछे दोहराइए। तब अगस्त मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला, यह राजा इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतः यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में जाने से पहले थोड़ा सा जो विषय वस्तु है, जो प्रसंग है, वो आप सब भली भांति परिचित होंगे कि किस प्रकार से 1000 वर्ष तक युद्ध चला है गजेंद्र का और ग्राह्य का, और गजेंद्र के द्वारा समर्पण किया है भगवान को, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था, भक्ति करता था, वैष्णव था, जो हमने श्लोक लिया है ना, सवै पूर्वम अभूत राजा पांड्यो द्रविड़ सतम इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणा। तो गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविड़ यानी दक्षिण भारत प्रांत के पांड्य नामक देश का राजा था, बहुत बड़ा राजा था। अपने पूर्व जन्म में वह इंद्रद्युम्न महाराज कहलाता था। एक तो महाराज थे, राजा थे, और साथ में क्या थे, वैष्णव थे, वैष्णव थे, यानी राज ऋषि थे, राजा भी थे और एक तरीके से ऋषि थे। अपने इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगे हुए थे और समय आने पे उन्होंने किया किया। तो अगला श्लोक हमने पढ़ा, स एकदा आराधन काल आत्मवान गृहितम मौन अवृत ईश्वरम हरिम जटाधरस तापस आपलुतोत्तम चुतम समचर्यम आशा कुलाचलाश्रम। इंद्रद्युम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया। अब राजा थे, वैष्णव थे, बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया और मलय पर्वत पर चले गए, जहां उनका एक आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था, उसके और सिर पर जटाएं हो गई थी और वह सदैव तपस्या में लगे रहते थे। एक बार की बात है कि उस राजा ने मौन व्रत धारण किया हुआ था, तपस्या कर रहे थे, जटाएं बड़ी हुई हैं, वन में हैं, मलय पर्वत पर हैं, और श्री भगवान की पूजा में पूर्ण रूप से तल्लीन थे और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। यहां तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब ठीक चल रहा है, राजा की भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, संपूर्ण सम्राट राज्य को छोड़ करके त्याग करके वन में आ गए हैं। जड़ भरत भी आ गए थे, है ना, भरत माजार भरत, जड़ भरत तो बाद में बने, वन में आ गए थे। तो अब क्या घटना घटती है वो आगे। यद ऋच्छया तत्र महाशया मुनि समागम समागम शिष्य गणे परिचिता तम वीक्ष्य तुष्णिम अकृत अराधिकम रस्य उपासीनम ऋषिश्चुक्कोपहा। जब इंद्रद्युम्न महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे, पूर्ण रूप से ध्यान में तल्लीन थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। किसकी इच्छा से? क्या इंद्रद्युम्न महाराज ने उनको बुलाया था? नहीं, भगवान की इच्छा से वो स्वयं ही पधारे वहां। जब मुनि ने देखा और जब वहां पधारे और मुनि ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न एकांत स्थान में मौन साधे बैठा है, मौन व्रत लिया था और मौन साधे बैठा है और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा है। अगस्त मुनि आए हैं तो उनको ये अपेक्षा थी कि राजा उठ करके उनका स्वागत सत्कार करे, कम से कम दो मीठे वचन बोले, आसन दे बैठने के लिए, जल पूछे, तो अपेक्षा होती है। लेकिन वो मौन साधे बैठा है और उसने स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हो गए। और फिर जो अभी हमने श्लोक का पाठ किया, तब अगस्त मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला, यह राजा इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतः यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मुख हाथी का शरीर प्राप्त करे। अब यहां तात्पर्य पढ़ते हैं शिल प्रभुपाद का। हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है और उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वह कठोर श्रम कर सकता है और प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार तथा बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी वह मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इतना बड़ा शरीर, इतनी शक्ति होते हुए भी उसको मनुष्य का एक नौकर बनकर उसकी सेवा करनी पड़ती है। अगस्त मुनि ने यह ठीक समझा कि इस राजा को हाथी बनने का शाप दिया जाए, क्योंकि इस शक्तिशाली राजा ने उसका स्वागत उस रूप में नहीं किया जैसा कि एक ब्राह्मण का होना चाहिए। यद्यपि अगस्त मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न को हाथी बनने का शाप दे डाला, किंतु यह शाप अप्रत्यक्ष रूप से एक वरदान था, क्योंकि हाथी का जीवन बिताने से महाराज इंद्रद्युम्न के पूर्व जन्म के पापों के सारे फल समाप्त हो गए। जब हाथी का शरीर प्राप्त हो गया शाप के द्वारा, तो उनके सारे पापों के फल जो भी थे बचे कुचे वो सब समाप्त हो गए। वृंदावन में रहते हुए जब कोई पापपूर्ण जीवन बिताता है तो प्रभुपाद बताते हैं कि उसको एक योनि जो है दंड के स्वरूप मिलती है, चाहे वो वानर बने, चाहे वो शुकर बने, चाहे वो कोई भी, उसको एक योनि दंड के स्वरूप दिया जाता है अगर वो वृंदावन में रहते हुए शरीर को त्याग कर देता है और पापपूर्ण जीवन बिताता है। तो वृंदावन धाम की महिमा में ये उल्लेख आता है कि एक जीवन उसको जो है दंड के स्वरूप दिया जाता है, उसके बाद वो मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी राजा के बचे कुचे पाप थे, जब अगस्त मुनि ने उनको शाप दे डाला तो वो उसके सारे पापों से वो अपने मुक्त हो गए। हाथी जीवन का अंत होते ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसा शरीर पाकर उनका पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया गया। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। भगवान जैसा रूप उनको प्राप्त हो गया, उसी शरीर से वो वैकुंठ भेज दिए गए और उनका शरीर जो है जो चतुर्पाद था, चार पैरों वाला शरीर था, वो किस में परिवर्तित हो गया? चतुर्भुज में। देखिए क्या चमत्कार हो गया। चार पैरों वाला एक जीव, एक योनि हाथी की, वो चतुर्भुज में बदल गई। और चार भुजाओं में क्या था उनके? फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म। सारूप्य मुक्ति। तो यहां श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, भवाम बुधेर वस पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम, के जिन्होंने आपका आश्रय लिया है। समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर शख्स राक्षस के शत्रु मुरारी, यशो मुरारे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यशो मुरारे, तो के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के चिन्ह में भरे जल के समान हो जाता है। जितना बछड़े का जो खुर होता है, गाय का बछड़ा होता है, उसका जो पैर का जो निशान होता है चिन्ह, उसमें कितना जल आ सकता है, तो ये जो पूरा भवसागर है ये उसके समान हो जाता है। किसके लिए? जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। उनका जो है लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है? भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करना होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता। वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं, वैकुंठ। और ये जगत क्या है? ये कुंठ जगत है, कुंठ, कुंठ और वैकुंठ, जहां कोई कुंठा नहीं। तो जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता और ना ही पग पर कोई संकट होता है, तो गजेंद्र को जो है अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। एक जीवन उसको गज की योनि में आना पड़ा। तो ये जो भौतिक जगत है, कई दफा ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है, हम वृंदावन धाम पहुंच चुके हैं, भक्ति भी ठीक ठाक चल रही है, सब कृपा चल रही है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कब जीवन में क्या घटना घट जाए कह नहीं सकते। विशेष रूप से भगवान जो हमको यहां पर दर्शा रहे हैं, देखिए ये तो एक लीला है, ये जो लीला चल रही है, भगवान अपने नित्य परिकरों को चुन लेते हैं हम जैसे बद्ध जीवों को दिखाने के लिए। और हमको सिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए कि हमको इससे क्या शिक्षा लेनी है। तो ये कोई साधारण जीव नहीं है, इंद्रद्युम्न कोई साधारण नहीं है, या जो हुहू बना मगरमच्छ, राजा हुहू मगरमच्छ बना, वो भी कोई साधारण नहीं है। तो ये भगवान कई बार लीला खेलते हैं हमको सिखाने के लिए। जैसे चार कुमारों ने शाप दिया था, किनको? जय विजय को, है ना। तो भगवान की इच्छा से फिर वो असुर बने कि आपको जाकर के असुर योनि में जन्म लेना है, भगवान की इच्छा से। तो भगवान अपने जो प्रियकर हैं, जो उनके परिकर हैं, उनसे से ये कार्य करवाते हैं। जैसे एक किसी व्यक्ति को अपने या किसी को अपनी बहू को समझाना हो तो वो क्या करता है, अपनी बेटी को डांटता है, बहू के सामने बेटी को डांटता है, बहू को सीधा नहीं डांटता। तो बहू को समझाता है, यानी बेटी को समझाता है ताकि बहू समझ जाए। इसी प्रकार भगवान अपने परिकरों के साथ ये लीला खेलते हैं ताकि हम जैसे बद जीव समझ जाएं कि वास्तव में हमारे लिए इसमें क्या शिक्षा है, हमको क्या करना है ना। तो हम तो बद जीव हैं, वो तो सभी भगवान के साथ जो लीला खेलते हैं वो सब मुक्त जीव हैं, लेकिन भगवान चुन लेते हैं। तो इसमें एक बात तो ये हम अच्छे से समझ सकते हैं कि विपत्ति भक्तों पे भी आती है। इंद्रद्युम्न बहुत बड़े वैष्णव थे और राजपाट छोड़ चुके थे, और छोड़ चुकने के बाद तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने कोई जानबूझ करके उनके प्रति अपराध भी नहीं किया। ये तो होता है ना, किसी ने वैष्णव अपराध कर दिया इसलिए उसको दंड मिल रहा है, लेकिन यहां हम देखते हैं कि इंद्रद्युम्न का कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया। ये दोष इंद्रद्युम्न महाराज का नहीं है, भाई वो एकांत में बैठे हैं, एकाग्रचित से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने आप को अपमानित समझ लिया, तो ये दोष इंद्रद्युम्न का तो नहीं है, महाराज इंद्रद्युम्न का दोष नहीं है। लेकिन चूंकि भगवान के भक्त इसको अपना अपमान समझ बैठे, अपना अपमान समझ बैठे, तो इस प्रकार से जो है उनको उसका दंड भुगतना पड़ा। अनजाने में किया हुआ, अनजाने में, यानी कोई दोष नहीं है इंद्रद्युम्न महाराज का, ऐसा इन श्लोकों से दिखाई देता है। या तो हो ना कि भाई जैसे महाराज इंद्र बैठे हुए हैं और उनके गुरु बृहस्पति आ गए और उन्होंने देख करके अनदेखा कर लिया, देख करके अनदेखा कर लिया, तो गुरु नाराज हो गए, गुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए, तो ऐसी स्थिति तो नहीं थी। कैसी स्थिति थी? जैसे हम देखते हैं रूप गोस्वामी के जीवन में, जब रूप गोस्वामी वृंदावन में बैठे हुए भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर की लीलाओं का अपने हृदय में आस्वादन ले रहे हैं, आस्वादन लेते लेते वहां से एक वैष्णव कृष्णदास वहां से निकले जो अपंग थे, जिनका शरीर ऐसा था बिल्कुल अष्टवक्र की तरह जैसे मुड़ा हुआ, और वो जब वहां से निकले और श्रील रूप गोस्वामी के पास से जब होके निकले तो श्रील रूप गोस्वामी हंस दिए जोर से। तो उन्होंने क्या समझा उस वैष्णव ने कि मेरी ये शरीर की मुद्रा को क्रिया को देख करके कि मैं अपंग हूं, मैं कैसे चल रहा हूं और ये मेरे को देख करके हंसे हैं। जबकि शिला रूप गोस्वामी भगवान की लीलाओं का आस्वादन ले रहे थे और उनको तनिक भी पता नहीं था कि यहां से कोई वैष्णव जा रहे हैं या मैं, उनके प्रति कोई उन्होंने दोष नहीं किया। तो लेकिन चूंकि उनको ठेस लगी और उन्होंने ये मान लिया कि मेरे कारण जो है, इनके कारण ठोस लगी, तो भगवान ने क्या किया, उनके अंदर हृदय में जो लीला चल रही थी वो लुप्त हो गई। भगवान तो जानते हैं ना कि भाई रूप गोस्वामी को कोई दोष नहीं है, फिर उनके हृदय से या उनके जो चित्त में जो लीला दर्शन चल रहा था वो क्यों एकाएक बंद हो गया जब कोई दोष भी नहीं था। तो चूंकि भगवान अपने वैष्णव जो उनके शरण में, उनको दुखी नहीं देख सकते। अगर वैष्णव को दुख हुआ है किसी भी कारण से, तो जो भी रहा हो उसका कारण, उसको कुछ ना कुछ उसका फल भुगतना पड़ता है। भगवान की इन शिक्षाओं से ये हमको ये समझना है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हमें किसी भी वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या लगता है, हमको ऐसा लगता है कि ये तो अभी कुछ समय हुआ आया है ना, या कुछ पता नहीं है किसी का कुछ पता नहीं है, कौन सी यात्रा पे निकला हुआ जीव, अपने कौन से पुण्य कर्म साथ लेकर के चल रहा है और कितनी तपस्या पूर्व जन्म में कर चुका है, हम नहीं जानते। हम अपनी साधारण बुद्धि से ऐसा कई दफा निर्णय ले लेते हैं कि ये वैष्णव जो है, इसके प्रति अगर हमने कोई गलत बोल दिया तो ये कोई वैष्णव अपराध नहीं है, ये कोई वैष्णव अपराध नहीं है। तो ऐसी मानसिकता से जो है बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो जानबूझ करके जो अपराध होते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब अनजाने में किए हुए अपराध का भी फल ठाकुर जी हमारे को दिखा रहे हैं कि जो अनजाने में आपकी कोई मंशा नहीं है, आपकी कोई भावना नहीं है किसी का अपराध करने के प्रति, लेकिन उसके वजह से भी हमको दंड मिल जाता है। तो जैसा कि बताया गया है स्कंद पुराण में, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। तो प्रथम जो वैष्णव अपराध बताया गया है वो तो है कि हमारे इसमें नहीं आता ऑलमोस्ट, है ना, कि किसी व्यक्ति की, वैष्णव की हत्या करना, तो ये तो सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन हत्या केवल शरीर की हत्या नहीं होती, कई बार वाणी से भी हत्या होती है, मतलब किसी प्रकार की हिंसा नहीं, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो मन से हो, किसी प्रकार की, ये पहला वैष्णव अपराध है जो कोई अगर करता है तो उसकी क्या गति होगी ये केवल भगवान ही जान सकते हैं। हालांकि जब कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो वैष्णव स्वयं जो है उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन वैष्णव की जो चरण धूलि होती है वो उसको क्षमा नहीं करती। भगवान जो है, भगवान क्षमा नहीं करते और वैष्णव की चरण धूलि भी क्षमा नहीं करती। तो आप देख सकते हैं, है ना, जब महाप्रभु ने देखा कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो है चोट पहुंचाई गई है जगाई मधाई के द्वारा, तो महाप्रभु को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। महाप्रभु नहीं देख सकते अपने भक्तों या अपने वैष्णव के प्रति किसी भी कारण से। तो पहला है कि किसी प्रकार की हिंसा करना, किसी की हत्या करना, और दूसरा है निंदा करना। किसी की भी निंदा नहीं होनी चाहिए, और वैष्णव की निंदा करने से फिर वैसा ही है जैसे महाप्रभु बताते हैं, जैसे हाथी बगीचे में घुस गया तो जैसे बगीचा तहस नहस हो जाता है, तो इसी प्रकार से हमारी भक्ति भी जो है वो तहस नहस हो जाती है। और निंदा के साथ ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, और देखने पर प्रसन्न, देखने पर प्रणाम नहीं करना। अब यही तो हुआ था दोष उनसे, उनसे यही तो हुआ, देखा भी नहीं पर उन्होंने मान लिया कि देखा है और प्रणाम नहीं किया। या फिर क्रोध करना, किसी वैष्णव के ऊपर क्रोध करना, या फिर उसको देख करके हर्षित नहीं होना, यह भी अपराध है। वैष्णव को देख करके अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो भी ये अपराध बताया गया। तो ये जैसे कई प्रकार के अपराध है ना शास्त्रों में हम देखते हैं, है ना, जैसे गोपाल चक्रवर्ती ने अपराध कर दिया हरिदास ठाकुर के प्रति, अगर तुम्हारी बात सत्य नहीं निकली तुम्हारी नाक काट दूंगा, जब वो हरिनाम की महिमा बता रहे थे तो कुछ ही दिनों में उनकी नाक गल गई, खत्म हो गई। दक्ष प्रजापति ने शिवजी के प्रति अपराध किया, स्वयं को बकरे का सर लगाना पड़ा। तो इस प्रकार से जो वैष्णव अपराध हैं इसमें जानबूझ के तो करना ही नहीं है, अनजाने में भी ना हो इसके प्रति हमारे को जो है पूर्ण रूप से सचेत रहना है। और जिसके प्रति वैष्णव अपराध हो जाता है या ऐसा आभास हो जाता है तो उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, और ताकि जीवन में ऐसी घटना का कोई परिणाम हमारे को न भुगतना पड़े। देखिए जैसे ध्रुव महाराज जो हैं, जब अपनी माता से उनको कष्ट हुआ, जब उन्होंने ऐसी वाणी से उनको हिंसा किया तो एक बहुत बड़ा अपराध हो गया उनकी विमाता यानी सुरुचि से। तो सुरुचि से जब अपराध हुआ तब वो 5 वर्ष के बालक थे, ध्रुव अभी बालक ही थे, और ये अपराध उनसे अनजाने में हुआ, उनको मालूम नहीं था कि ये बहुत बड़े वैष्णव हैं। लेकिन जब ध्रुव जो है वन में चले गए और उनको भगवान ने दर्शन दिए और उनको बताया कि ध्रुव अब तुम वापस जाओ और जाकर के वहां राज्य प्राप्त करो, तुम्हारे पिता वन को चले जाएंगे, तुम्हें 36,000 वर्ष तक राज्य करना है, उसके बाद ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी। तो यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, जहां भगवान ध्रुव को आदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान ने कहा निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और जब वह शिकार में मगन रहेगा तो मारा डाला जाएगा, यानी उत्तम शिकार खेलते हुए मारा डाला जाएगा, और तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसकी खोज करने जंगल में जाएगी, पुत्र मारा जाएगा भगवान पहले से बता रहे हैं, और उनकी माता खोज करने जंगल में जाएगी और वहां पर अग्नि से दावाग्नि में मारी जाएगी। वैष्णव अपराध। अब यहां प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में उसको सुन लेते हैं। ध्रुव महाराज जंगल में भगवान की खोज करने आए थे और उनके मन में अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी। विमाता मतलब सौतेली मां जो थी उनकी। विमाता ने ध्रुव का अपमान किया था जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वरन एक महान वैष्णव थे एक वैष्णव के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध संसार में सबसे बड़ा अपराध है। ध्रुव महाराज का अपमान करने के कारण सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से पागल होगी, पागल हो जाएगी और दावाग्नि में प्रवेश करेगी, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसका विशेष उल्लेख भगवान ने ध्रुव से किया था। भगवान ने ध्रुव महाराज को ये दोनों बातें बता दी थी, क्योंकि वे अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने पर दृढ़ थे। क्योंकि ध्रुव महाराज की एक इच्छा थी ना कि इसने मेरा अपमान किया है, तो उनसे वो बदला लेना चाहते थे ध्रुव। इसीलिए भगवान वैष्णव की बात को पूरा करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं प्रभुपाद, इसका विशेष उल्लेख भगवान ने ध्रुव से किया था, क्योंकि वे अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने पर दृढ़ थे। इससे हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भूल कर भी हम किसी वैष्णव को अपमानित ना करें, भूल कर भी ना करें। हम न केवल किसी वैष्णव का ही वरन किसी का भी बिना कारण के अपमान नहीं करना चाहिए। जब सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था तो वो एक नन्हे से बालक थे। अब एक बालक का तो कोई भी अपमान कर देता है, 5 साल के बालक को कोई क्या समझता है कि ये कोई वैष्णव है, बहुत बड़ा वैष्णव है। तो ये यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, निस्संदेह उसे पता ना था कि ध्रुव एक जाने माने वैष्णव थे, अतः उसने अनजाने में अपराध किया था। अनजाने में अपराध, जब कोई अनजाने में किसी वैष्णव की सेवा करता है, यदि अनजाने में, प्रभुपाद लिखते हैं, अनजाने में किसी की आप सेवा कर देते हैं किसी वैष्णव की, तो उसका फल बहुत अच्छा होता। आपको पता नहीं वैष्णव है लेकिन आपने उसकी सेवा कर दी, तो उसका फल अच्छा होता है। श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात करते हैं, भगवान पक्षपात करते हैं वैष्णव को। अगर आप प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न, और वैष्णव को आप हानि पहुंचाएंगे, दुख देंगे, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात करते हैं। वैष्णव को प्रसन्न या अप्रसन्न करने से परमेश्वर की प्रसन्नता तथा नाराजगी पर प्रभाव पड़ता है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की अष्टपदी प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। मनुष्य द्वारा शुद्ध वैष्णव रूप गुरु को प्रसन्न करने पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, किंतु यदि वह गुरु को नाराज कर दे तो पता नहीं उसका क्या होगा, पता नहीं उसका क्या होगा, प्रभुपाद लिखते हैं। तो इस प्रकार से तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदारी। महाप्रभु ने तो 8 श्लोकों में सब कुछ बता दिया, हम उसको किस प्रकार से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और ये बात भी है कि भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौनते है प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति, एक कुंती पुत्र घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भक्ति का मार्ग, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भागवतम का आश्रय लेते हैं, भगवत गीता का आश्रय लेते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वैष्णव की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो किसी, आप सभी वैष्णव जन में से कोई आज के इस के ऊपर कुछ बोलना चाहें दो शब्द तो अच्छा लगेगा। हमारे पास 5 मिनट हैं। और कोई मुझसे गलती हुई हो उसका सुधार भी कर सकते हैं। हाँ देखिए ऐसा है, कुछ लीलाएं होती हैं जो भगवान अपने परिकरों को चुन लेते हैं। हालांकि जब कोई किसी को शाप देता है उसका जो भक्ति का जो बैलेंस है वो तो कम होगा ही होगा। शाप देना इतना आसान नहीं है, उसके कई जन्मों की भक्ति जो है उस शाप के साथ चली जाती है। लेकिन जब लीला के लिए भगवान चुनते हैं अगस्त मुनि को कि आपको ये कार्य करना है ना, तो इतना ही हम समझ सकते हैं कि अगस्त मुनि का जो है यहां पर कोई दोष नहीं दिखाया गया है, अगस्त मुनि को ठेस पहुंची है, अगस्त मुनि को ठेस पहुंची है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी के उसमें संदर्भ में हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी का कोई दोष नहीं था, तो ब्राह्मण ने उसको ऐसा मान लिया कि मेरा अपमान किया है ना। तो अब उस ब्राह्मण को क्या सजा मिलेगी कि उसने ऐसा क्यों सोचा, ये एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन हमें इतना समझना चाहिए कि ये भगवान अपने परिकरों को चुनते हैं हमको सिखाने के लिए। और कोई इसके बारे में कोई प्रकाश डालना चाहे तो डाल सकता है। हाँ सबको चुनते हैं, ये स्टेज पे प्ले चल रहा है। स्टेज पे जैसे नाटक होता है ना कि तुमको एक खलनायक की भूमिका निभानी है, आपको नायक की भूमिका निभानी है, आपको ये कार्य करना है। तो भागवतम में जिसका भी नाम है वो कोई साधारण जीव नहीं है। कोई भी जीव जिसका भागवतम भगवान से जो अभिन्न है उसमें अगर किसी का नाम आ रहा है, चाहे वो सुरुचि हो, चाहे सुनीति हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, चाहे कंस हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, ये कोई साधारण जीव नहीं है। इनको ऐसा नहीं देखना कि भाई ये वास्तव में ही ये भगवान की इच्छा से ये लीला हम लोगों के लिए। जैसे हमने बताया ना कि अगर बहू को सिखाना है तो बेटी को डांटते हैं, वो हिसाब है। ठीक है, हाँ बताइए। बहुत अच्छी बात है, हाँ सही बात है। हाँ देखिए ऐसा है, हम बता रहे हैं कि भगवान लीला खेलते हैं। कलेर दोषा निधे राजन अस्ति ही एको मान गुना कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलयुग में मानसिक रूप से आप जो भी कोई पाप करते हैं उसका आपको कोई फल नहीं भुगतना पड़ता जब तक आप उसको क्रियान्वित न कर दें। तो इसी प्रकार से ये बात सत्य है। लेकिन ये जो प्रसंग है ये भगवान की इच्छा से हमारे सामने आते हैं। ये हमारे सामने जो प्रसंग लाए जाते हैं, तो रूप गोस्वामी कौन है? भगवान की मंजरी तो है, भगवान की मंजरी है। तो उनके ऊपर एक भगवान ने उनके हृदय से कुछ समय के लिए अपनी लीला का दर्शन बंद कर दिया। तो फिर रूप गोस्वामी कहाँ गए? सनातन गोस्वामी के पास गए और उनसे कहा कि क्या कारण है। तो उन्होंने उसको खोजा, खोज करी कि क्या कारण है कि लीला दर्शन बंद हो गया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कहीं अनजाने में कोई तुमसे अपराध तो नहीं हो गया। तो फिर उन्होंने एक गोष्ठी यानी कोई एक प्रसाद का जो है भंडारा किया और उसमें जो नहीं आएगा तब वो उसके पास गए और उससे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आए। तब उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा अपमान हुआ। तब उनसे क्षमा याचना करके जो है उनको संतुष्ट किया गया। तो ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं ये साधारण घटनाएं नहीं है, ये भगवान के द्वारा जो है हमको सिखाने के लिए अपने परिकरों के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, चाहे वो ग्राह्य है जिसने मगर ने दिखता तो यह है ना, मगर ने गजराज को पकड़ लिया, लेकिन मगर ने क्या अपनी इच्छा से पकड़ लिया? वो भी तो भगवान की प्रेरणा से ही उसने गजराज को पकड़ा है। 1000 वर्ष तक जो पकड़े रखा किसकी प्रेरणा से पकड़े रखा, किसकी शक्ति से पकड़े रखा? भगवान की प्रेरणा से, भगवान की शक्ति से। तो बिल्कुल हमको इस बात को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि ये सब जो हैं, ये भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं और भगवान इनको चुन करके हमारे को समझाने के लिए और हमें भगवान के प्रति हमारी आसक्ति पैदा हो, ये सब घटनाएं किस लिए, ताकि यहां भागवतम हो सके, भागवतम कथा हो सके, हम लोग आपस में भगवान के प्रति आदान प्रदान कर सके। मेरे ख्याल से तो जी जी हाँ, तो सारी ये घटनाएं जो हैं ये प्री प्लैंड हैं, जिसको कहते हैं प्रायोजित, पहले से आयोजित, ठीक है जी। पूर्व जन्म में की हुई भक्ति विनष्ट नहीं होती, पूर्व जन्म में की हुई भक्ति विनष्ट नहीं होती, है ना, तो उसका हमारे को जो है आगे चल के, तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ना भक्त का विनाश होता है ना भक्ति विनाश होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिला प्रभुपाद।